ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS ਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
J&G Mortgages deals with mortgages for self-employed, financing for second mortgages, 100% financing on builder purchases, new immigrants and low rates. If you're looking for a career in mortgage industry, J&G Mortgages is hiring for new and experienced mortgage agents. For more information, call Jarmanjeet Singh or Gurpreet Obey at 416-898-3800-416-898-3800. Brokerage license number 13034.
ਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ।
ਹਾਂ, ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਸਾਊਥ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ। ਕਾਲ 905-874-7171।
आप सुन रहे हैं रेडियो साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7। हमारी रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या फिर आज ही eawaz ऑफिशियल ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए। और अब वक्त हुआ चाहता है खूबसूरत और मालूमती प्रोग्राम का, जो eawaz टीवी के लिए रिकॉर्ड किया गया। eawaz टीवी को आप तमाम IPTV बॉक्सेस पर देख सकते हैं।
جی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے فہم مظفر آپ کے ساتھ، اور ہماری ویب سائٹ آپ نوٹ کر لیجیے گا، www.eawaz.com۔ فیس بک کا پیج ای آواز کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ سیگمنٹ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس میں میں بہت احسان مند ہوں اور بہت شکر گزار ہوں جناب سمیع اللہ ملک صاحب کی، جو میرے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں، اپنی مکمل تحقیق اور ریسرچ کے بعد حقائق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سمیع اللہ ملک صاحب انٹرنیشنلی نون پرسنالٹی ہیں۔ آپ کی ویب سائٹ bittertruth.uk، bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے۔ بہت شکریہ ہم تمام لوگوں کا جو رابطہ کر کے اس پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دیتے ہیں، مگر یقیناً ہم 770 کو، ہم ای آواز کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ جناب سمیع اللہ ملک جیسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام جس کو میں آپ کے ساتھ لے کر کے چل رہی ہوں، ابہام کے بارے میں ہے۔ یعنی یہ ہم نے پہلے بھی پروگرامز پیش کیے تھے، کچھ لوگ جو آئیڈیاز کو نہیں مانتے، وہ بیچ میں کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے ہیروز بھی ہیروز نہ رہے۔ میں ایک یہ دیکھ رہی تھی، قائد اعظم کے بارے میں مشہور کتاب دا سول اسپوکس مین، اس کی مصنفہ عائشہ جلال کہتی ہیں کہ سرحد کے دونوں جانب جو یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے بارے میں ابہام پیدا کیا جا رہا ہے، یقیناً بہت خوفناک ہے۔ اور وہ جد و جہد جو آپ نے کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے، ہم اس کا بدل دے ہی نہیں سکتے، ہی از آر ہیرو۔ ایک اور ابہام کی جب میں بات کرتی ہوں، یعنی جو لوگ ناپسند کرتے ہیں یا کسی نظریے سے خائف ہیں، تو وہ کس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں؟ جی قائد اعظم لباس کیا پہنتے تھے، مشرقی لباس تھا، مغربی لباس تھا، یعنی سادہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے۔ پچھلے سال ایک اور چیز میری نظر سے گزری، میں وہ یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور تفصیل ہم اس کی جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے چاہیں گے۔ میں نے زندگی کے تمام سال بتا دیے، ہم نے پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست کو ہم مناتے تھے، یہ ڈاکیومنٹس جب ہمارے سامنے آئے، اور میں خود پچھلے سال سے مخمصے کا شکار ہو گئی۔ کہاں تک یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 تاریخ کو ڈاکیومنٹس کو سائن تو کر لیا تھا، مگر ہی ہیڈ ٹو ٹریول ٹو انڈیا، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ گورنر جنرل کا اپنا حلف لینا تھا، اور ان ڈاکیومنٹس کو یعنی پاکستان کی آزادی، ہی جسٹ سائنڈ، بیکاز وہ دو جگہوں پہ ایٹ دا سیم ٹائم موجود نہیں ہو سکتے تھے۔ تو جی ایکچوئل یوم آزادی 15 اگست ہے. کمال ہے صاحب. علامہ اقبال کے بارے میں آپ بات کر لیں, میں کسی بھی قومی ہیرو کی بات کر لوں, یعنی ہر جگہ پہ کچھ لوگ جو ہماری توجہ کو بٹانا چاہتے ہیں انہوں نے ہر چیز میں ابہام پیدا کر دیا, یعنی ہمارے ہیروز کو ہیرو بھی نہیں رہنے دینا چاہتے. جناب سمیع اللہ ملک صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس پہ جو انفارمیشن دیں گے وہ ہمارے دلوں پہ اثر ضرور کرے گی.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ علی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین.
جزاک اللہ خیر.
بہن, میں آپ کے توسط سے آپ کے تمام سامعین و ناظرین جو ہیں ان کو میں سلام عرض کرتا ہوں, اور یہ واقعی آپ نے جو بڑا ہی فکر کے ساتھ جو سوال اٹھایا ہے ابہام کے بارے میں, اور ہمارے جو ہیروز ہیں ان کی اب کوشش ہے کہ ہمارے ہیروز کو اپنی نگاہ میں, لیکن جو ہم پاکستانی ان کی نگاہ میں ان ہیرو کو زیرو کیا جائے, لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے خود تاریخ کی روشنی میں یہ نہ صرف منہ کی کھا رہے ہیں بلکہ اس کے بعد جو ہے شرمندگی کے بعد ان کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بات بڑی معنی خیز ہے کہ تصور پاکستان کی تردید اور تحریک پاکستان کی مخالفت میں جو سوالات 1940 سے لے کے 1947 تک اٹھائے گئے تھے, اور تحریک پاکستان کے دوران جن کی بڑی مؤثر اور محکم تردید کر دی گئی تھی, وہی سوال جو ہے وہ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں, مطلب یہ سب سوچنے کی بات ہے. اور آج بھارت کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی ایک چھوٹا سا اکائی ہے, اقلیت ہے, جو کہ انڈیا جو انڈیا کہہ رہا ہے انڈیا کی زبان وہ بول رہے ہیں, مطلب ہے. اور وہ اب آپ دیکھیے دور نہ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے, قائد اعظم کی بات ہم بعد میں کریں گے, پہلے ہم اس کی بات کریں گے جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا, گویا علامہ اقبال, جہاں سے یہ ابہام شروع ہوگا کریں گے جی لوگ. اب گزشتہ سال جب یوم اقبال کی مناسبت سے منعقد تقریبات میں جس میں نے ذکر کہ پنڈت نہرو کے اس بیجا الزام کی گونج ایک دفعہ پھر سنائی دی کہ جی اقبال اپنی زندگی کے آخری دور میں سوشلزم کے ذریعے سے تصور پاکستان سے دستبردار ہو گئے تھے, لیکن آپ نے بھی کوئی گزشتہ پروگرام میں مشاہد پاکستان کی بابت ایک ابہام کا ذکر کیا تھا, تو میں نے کہا کہ سلزام کی کھوج اور تحقیق جو ہے تاریخی لحاظ میں ہونی چاہیے. یعنی اقبال جنہوں نے پاکستان جیسی ریاست کا خواب دیکھا, آخر ان کو اس سلزام میں کیوں ملوث کیا جا رہا ہے؟ ایک ہی وقت میں بھارت اور پاکستان میں یہ بے ڈھنگا راگ کیوں لاپا جا رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ پنڈت نہرو کا الزام تو سراسر غلط ہے, ان کا یہ الزام لازمی پر نہیں بلکہ بدنیتی پر مبنی ہے. اب دیکھیے پنڈت نہرو نے یہ بات اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھی تھی, جو انہوں نے 1944 میں قلعہ احمد نگر کے جیل میں بیٹھ کر رقم کی تھی. اس کتاب میں انہوں نے بطور شاعر اور محقق اقبال کے فیضان کی تحسین تو بہت کی, مگر اقبال کو خراج تحسین کرتے کرتے وہ یہ بھی کہہ گزرے کہ اقبال ایک شاعر, عالم اور فلسفی تھے اور پرانے جاگیرداری نظام سے وابستہ تھے. اب جن لوگوں نے اقبال کی شاعری, فلسفہ, شخص کا سرسری مطالعہ کیا ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے, آپ بھی گواہی دیں گے اس بات کی کہ اقبال کے اہم جاگیرداری نظام کا اقبال سے بڑا دشمن تھا, ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. یعنی اقبال تو پاکستان کے اولین حامیوں میں سے تھے, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت نہرو نے اس تجویز کی لغویت اور اطراف کو محسوس کر لیا تھا جو اس تجویز مضمر ہیں. ایڈورڈ ٹامسن ایک ہے ان کا, جو نہرو کا بڑا ساتھی, اس نے لکھا اپنی ملاقات کے بارے میں کہ اقبال سے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کے اجلاس کی اقبال مطلب صدارت کر رہے تھے, اور ان کو یقین تھا کہ میں یہ, یعنی وہ ٹامسن ہے وہ لکھ رہا ہے اپنی کتاب کے اندر, میں اس کا بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا جس کی لوگ ریفرنس دیتے ہیں نہرو کے ساتھ, اس کی بھی ٹامسن کی بات کا بھی ریفرنس دیتے ہیں. یعنی ایک ملاقات جو ان سے اقبال کی ہوئی, انہوں نے مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں صدر کی حیثیت سے پاکستان کی حمایت کی تھی, مگر ان کو یقین تھا کہ یہ تجویز مجموعی طور پر ہندوستان اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے مضر ہے. شاید انہوں نے اپنا خیال بدل دیا تھا یا پہلے اس مسئلے زیادہ غور نہیں کیا تھا, کیونکہ اس وقت تک اس نے کوئی اہمیت حاصل نہیں کی تھی. ان کا عام نظریہ زندگی پاکستان یا تقسیم ہند کے اس تصور کے ساتھ جو بعد میں پیدا ہوا, हम आहंग नहीं था। आखिरी उम्र में इकबाल का रुझान इस तरह की तरफ बढ़ गया, सोवियत यूनियन की जबरदस्त कामयाबी ने उनको बहुत मुतासर किया, उनकी शायरी का रुख बदल गया। अब ये पंडित जी ने अपनी किताब में जो मैंने जो इबारत पढ़ी है टॉमसन की, उसने अपनी किताब में लिखा है, रख दिया कि 3 वर्ष पहले एक कादिर के दिबाचे के साथ कादिर नाम जो इकबाल, आपको याद होगा कि उसी जमाने में इसके बाद कायदे आजम और इकबाल के दरमियान जो मरासत हुई थी, कायदे आजम ने उस मरासत को शाया कर दिया। इस किताब में शामिल 28 मई 1937 का वो तवील खत भी शामिल है जिसमें पंडित जी की बेखुदा सूफिज्म को भी जेर बहस लाया गया और बताया गया कि मुसलमान तो रहे एक तरफ, खुद हिंदू माशरा भी बेखुदा सूफिज्म कभी कबूल नहीं करेगा। ये इकबाल खत में लिख रहे कायदे आजम जो खत है, मतलब पंडित जी की सूफिज्म को रद्द करते हुए इकबाल ने कायदे आजम को बताया कि अगर इस्लामी शरीयत की दौरे हाजिर के माशी नजरियात की रोशनी में असर नौ तफसीर की जाए तो मुसलमान अवाम की रोटी और रोजगार का मसला बेहतर हल हो सकता है। मुसलमानों को गुरबत के अजाब से निजात दिलाने के लिए यह भी जरूरी है कि मुसलमानों की अलग कानूनसाज असेंबली हो। यह असेंबली मुतहदा हिंदुस्तान की बजाय एक अलग खुद मुख्तार मुनजम कायम की जा सकती है। इस खत के मुनजात जो है जुबान हाथ से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, मैं ये इकबाल का मैं खत आपके सामने पढ़ रहा हूं जो मैं आपके सामने कर रहा हूं मेरी बहन, यानी उसमें जो तजावीज पेश की इकबाल ने कहा, पहली जो तजवीज पेश की कहा कि इकबाल जवाहरलाल नेहरू की बेखुदा सोशलिज्म पर इस्लाम के इक्तसादी निजाम को तरजीह देते हैं। दूसरा ये कि इस्लाम के इक्तसादी निजाम को अहद जदीद के सियाक व सबाक में नाफज करने के लिए जुदागाना मुसलमान मुल्क का क्याम जरूरी है। यह है तस्वीर पाकिस्तान इकबाल का जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। मतलब इसी से, इस दूसरी तजवीज से ही इकबाल को समझा जा सकता है। तीसरी जो उन्होंने कहा कि अपने फास से फकत चंद माह पहले वो कायदे आजम को यह मशवरा दे रहे थे कि वो क्या भी पाकिस्तान को कुल हिंद मुस्लिम लीग का सियासी प्रोग्राम बना ले, ये कायदे आजम को इकबाल मशवरा दे रहे थे। और चौथी जो तजवीज दी खत के आखिर में वो कायदे आजम से सवाल करते हैं, क्या वो वक्त नहीं आ पहुंचा कि जब हमें खुलकर क्या हमें पाकिस्तान को अपनी मंजिल करार दे देना चाहिए। अब इकबाल की फास से 3 माह पेशतर पंडित नेहरू ने मियां सहारुद्दीन के हमराह जवेद मंजिल में लामा इकबाल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की खुशगवार यादें भी तो नेहरू ने अपनी किताब में दर्ज की हैं। पंडित जी उसमें एक वाक्य जो बयान करना चाहिए था वो मुनासिब भी समझा, लेकिन ये है कि डॉक्टर आशुतोष बटालवी ने अपनी किताब इकबाल के आखिरी 2 साल में इसको बयान कर दिया है और नेहरू की जिंदगी हो गया। उसमें उन्होंने लिखा है इकबाल बटालवी ने कि पंडित नेहरू उस जमाने में जोर शोर से सोशलिज्म का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। इन नेशनल कांग्रेस के 2 इजलासों के वो सदर रह चुके थे और दोनों मरतबा उन्होंने अपने खुतबा इस्लाम में उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के तमाम मसायब का इलाज सोशलिज्म है, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों में कोई शख्स भी इस बारे में पंडित नेहरू का मामला या ख्याल नहीं था, बल्कि सरदार पटेल, राजगोपालाचार्य, सत्यमूर्ति गैर पंडित नेहरू के देखे सख्त खिलाफ थे और तनकीद करते थे। फिर दुरानी मुलाकात में डॉक्टर साहब ने पंडित नेहरू से पूछा कि सोशलिज्म के बारे में कांग्रेस के कितने आदमी आपके ख्याल है। पंडित ने जवाब दिया कि 90 दर्जन करीब तो होंगे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर लम्मा इकबाल ने फरमाया कि तजब है, खुद आपके जवाब में आपके हम ख्यालों की तादाद सिर्फ 90 दर्जन है और इधर आप मुझे कहते हैं कि मैं मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने का मशवरा दूं, तो क्या मैं 10 करोड़ मुसलमानों के 6 आदमी की खातर आदमी झोंक दूं। इस पर नेहरू खामोश हो गए। इस मुलाकात में एक और नागवर वाक्य भी पेश आया था जो पंडित जी ने बयान करना मुनासिब समझा, अलबत्ता वो भी बटालवी साहब ने किताब में लिख दिया। उन्होंने कहा कि वो लिखते हैं बटालवी साहब का भी इन 2 जिलों में सारी गुफ्तगू जारी थी कि यह कहा मियां इफ्तखारुद्दीन बीच में बोल उठे कि डॉक्टर साहब आप मुसलमानों के लीडर क्यों नहीं बन जाते, मुसलमान मुझे जनाब ज्यादा आपकी इज्जत करते हैं, अगर आप मुसलमानों की तरफ से कांग्रेस के साथ बातचीत करें तो नतीजा बेहतर निकलेगा। अब देखिए डॉक्टर साहब लेटे हुए बीमार सुनते ही गुस्से में आ गए, उठ के बैठ गए और अंग्रेजी में कहने लगे, अच्छा तो ये चाल है कि आप मुझे बिला फसला के जिला के मुकाबले खड़ा करना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिला ही मुसलमानों का लीडर है, मैं तुमका मामूली सिपाही हूं। ये उन्होंने अंग्रेजी में कहा, उनके अल्फाज हैं कि वेल द ट्रिक इज दैट यू वॉन्ट टू मेक मी स्टैंड अप टू अगेंस्ट मिस्टर जिना बाई मेकिंग फन ऑफ मी, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट मिस्टर जिना इज द ओनली लीडर ऑफ द मुस्लिम्स एंड आई एम हिज ऑर्डिनरी सोल्जर हु विल स्टैंड ऑलवेज बिहाइंड हिम। इसके बाद डॉक्टर खामोश हो गए और जो जो कमरे में स्कूल सा तारी भी हो गया और सब गुस्सा भी आ गया डॉक्टर साहब को। तो नेहरू ने फिर गुफ्तगू जारी रखना मुनासिब न समझी और उन्होंने फौरी तौर पर इकबाल से इजाजत दी और रुखसत हो गए और उन्होंने अपनी किताब लिखा कि मैंने इफ्तिखार को बड़ा डांटा इस मामले में कि आपने ये ऐसी नाखुशगवार बात क्यों कर दी। अब आप इसे ये नाखुशगवार और सियासी आइडियोलॉजी की तरबीत समझकर अपनी किताब में दर्ज करना तो उन्होंने तो मुनासिब नहीं समझा नेहरू ने, लेकिन बातें सामने आ गई हैं, اب یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں نے چیزیں لکھی ہیں, ہندوؤں نے, ہندو مورخوں نے بھی چیزیں لکھی. حیرت یہ ہے کہ نہرو نے ناقابل فرموش یادوں کو تو اسائل سے فرموش کر دیا, مگر وہ جو ایڈورڈ تھامسن جس کا میں نے ذکر کیا, وہ ان کی گپ شپ کو انہوں نے بڑا ناقابل تردید تاریخی صداقت درجہ دے کر اپنی کتاب میں شامل کر لیا. یہ ہے ان کی بدیانتی, تحریری بدیانتی بھی. ایڈورڈ تھامسن دراصل آکسفورڈ یونیورسٹی میں بنگالی زبان کے استاد تھے اور تاریخ کے حصے میں بڑا علمی شغف تھے. دو مرتبہ بتانے کے اخبار مانچسٹر گارڈن کے نامہ گار کے روپ میں برٹش انڈیا میں تشریف لائے تھے. مہاتما گاندھی, رابندر ناتھ ٹاگور, راج گوپالچاریہ, سردار پٹیل اور نہرو کے ساتھ بڑے گہرے مراسم تھے, جہاں وہ ہمیشہ مسلم کی مخالفت کرتے تھے اور کانگریس کی بڑی پرجوش وکالت کو کبھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیتے تھے. اب جس روایت کا سہارا لے کر پنڈت جی نے اخبار پر لام تراشی کی ہے, وہ ایڈورڈ تھامسن اور لمانگ بل کی زبانی گفتگو پر مبنی ہے. ایڈورڈ تھامسن موصوف کا یہ بیان قادر کے نام اقبال کے زکرہ بالا خطوط کی دستاویزی شہادت سے ساتھ ساتھ اقبال نہرو ملاقات کے مندرجہ بالا حوالہ مقامات کی بنیاد میں بھی ثابت ہو گیا کہ یہ غلط ہے. اقبال آخر دم تک صدر پاکستان کے حامی رہے اور اس کے بارے میں محنت کرتے رہے اور اس کے لیے پھر اس ملک کے لیے باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو نیا ملک جو بنے گا اس میں ہمارا آئین کیا ہوگا, وہاں پہ قرآن کو کیسے نافذ کیا جائے گا, قرآن کیسے اس میں چلے گا اس میں. پھر انہوں نے آپ میں بتایا کہ جب وہ نہرو کے ساتھ افتخار نے ایک بات کی قائد کے خلاف علامہ اقبال کو مطلب ورگلانے کی, تو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کس طرح کہا کہ میں تو قائد اعظم کا ایک اپنا سپاہی کی حیثیت میں سرگرمی عمل ہوں. اور پھر انہوں نے اسلامی ہند کو یہ مشورہ بھی دے دیتے تھے کہ بھائی میری جب اقبال بیمار تھے لوگ دعائیں کرتے تھے, تو انہوں نے کہا بھائی میری زندگی دعائیں مانگی جائے, محمد علی جناح کی تمہیں زندگی کی دعائیں مانگو. صرف جناح ہی قوم کی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پھر انہوں نے جو شعر بڑا مشہور آج کل کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے, یعنی نظریاتی اختلافات کے باوجود علامہ اقبال اور پنڈت نہرو کے درمیان میں آپ کو ایک بات باور کرتا ہوں کہ اقبال کا ایک بڑی خوبی تھی کہ ذاتی اختلافات کے باوجود اقبال کے پنڈت نہرو کے ساتھ تعلقات ہمیشہ بڑے باہمی احترام کے رہے. اس کی وجہ صرف اصل یہی تھی کہ علامہ اقبال ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, غور فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر
ہیں.
احسن کن الخیار کو مطلب وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے. پھر پنڈت نہرو نے 1931 میں لندن کی گول میز کانفرنس میں مسلمان مندوبین کے جو مسلمان ہمارے شامل ہوئے تھے اس کو طرز فکر عمل کو تنقید کا بڑا نشانہ بنایا تھا. اقبال اس کانفرنس میں شریک تھے مگر نہرو شریک نہیں تھے, اور کانگریس کی نمائندگی جو تھی گاندھی جی کر رہے تھے. گاندھی جی نے واپسی پر کہا کہ انہوں نے ذاتی طور پر مسلمانوں کے تمام مطالبہ کو قبول تو کر لیا تھا, مگر سیاسی رجعت پسندی کی بنا پر مسلمانوں نے کانفرنس کو ناکام بنا دیا ہے. اور نہرو نے گاندھی جی کی باتوں میں آ کر مسلمان مندوبین کے خلاف انتہائی سب بیان تو ڈال دیا. اب علامہ اقبال نے گاندھی جی کے الزام کی تدمین میں جواہر لال نہرو کو ایک جو خط لکھا وہ ان الفاظ سے شروع کیا, میں ان کا خط ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لفظ بلفظ, تاکہ یہ کیونکہ تاریخی مسئلہ ہے میں اس کی زیر زبر اور قوما بھی اس میں ہلانا نہیں چاہتا. انہوں نے جو خط شروع کیا اس میں غاز ایسے کیا کہ میں پنڈت جواہر لال نہرو کے خلوص اور صاف گوئی کی ہمیشہ سے قدر کرتا رہا ہوں. ماس بائی متزین کے جواب میں جو تازہ بیان انہوں نے دیا ہے اس سے خلوص ٹپکتا ہے, اور یہ چیز آج کل کے ہندوستانی میں کمیاب ہے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو گول میز کانفرنس سے لندن میں منعقد ہوئی ہیں ان میں شریک ہونے والے مندوبین کے رویے کے متعلق پنڈت جی کی تحقیق کی بنیاد کسی تاثر پر مبنی ہے.
واو,
اب دیکھ لیے کر دیا کلک کر دیا ان کو مطلب. اب اس خوشگوانی کے اظہار کے بعد علامہ اقبال نے اصل حالات کو بے نقاب کرتے ہوئے بتایا کہ گاندھی جی نے مسلمانوں کے مطالبات کو ذاتی طور پر ماننے کا انڈیا تو دیا تھا, مگر ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ اس بات کی حتمی ضمانت نہیں دے سکتے کہ کانگریس کی مجلس انتظامیہ جو ہے ان مطالبات تسلیم کر لے گی. ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کانگریس ان مطالبات کے سلسلے میں مکمل اختیار دینے کے لیے کبھی بھی رضامند نہیں ہوگی. گویا امرن گاندھی جی نے مسلمانوں کے تمام مواد کو رد بھی کر دیا, اور ساتھ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مان بھی رہا ہوں. مطلب یہ تھی پالیسی کی گاندھی جی کی, یہ جو دعملی تھی مطلب اس آخر کتابوں میں آ گئی ہے. مورخ بھی اسے لکھ رہے ہیں, ہندوستان کے مورخ ہندو مورخ وہ بھی لکھ رہے ہیں, انگریز مورخوں نے یہ ذکر کیا اس کا. اب گاندھی جی نے جو ایک بات کہی تھی جو بڑی غیر منصفانہ تھی, وہ کہا تھا جی مسلمان اچھوتوں کے مخصوص مطالبات کی حمایت ترک کر دیں, مگر مسلمانوں نے اچھوتوں کی حمایت سے دستداری کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور گاندھی جی نے کہا کہ آپ نے مجھے اس بات سے ناراض کر دیا. بھی ہم تو ان کو اچھوت سمجھتے نہیں, اچھوت تو آپ سمجھتے ہیں, ہمارے اسلام میں تو ذات پات کا مسئلہ نہیں ہے, ہم تو انسان کو انسان سمجھتے ہیں. یہی تو پاکستان کی سب سے بڑی بنانے کی وجہ بھی ایک اور بھی یہ بھی تھی اس کے ساتھ. फिर आप ये देखिए गांधी जी के इस रवैये के हमायत में पंडित जी की लपकुशाई पर एक बार और हैरतजदा रह गए। चुनाचे उन्होंने अपने इस बयान में उन्होंने ये सवाल उठाया कि अपने जुबान जदयाम सोशलिस्ट ख्याल के पेश नजर पंडित नेहरू इस इंसानियत को शब्द की कैसे हमायत करेंगे। कम से कम उन्हें यह जेब नहीं देता कि मुसलमानों को सियासी मामले में जजत पसंदी का इल्जाम दे। इस सूरत में वो लोग जो हिंदुओं के फिरका प्रस्ताना मकासद को अच्छी तरह समझते हैं इस नतीजे पर पहुंचने में हम जाने में होंगे कि पंडित जी फिरका वाराना फैसले के खिलाफ हिंदू महासभा की जारी कदम मुहिम में सरगर्म रुकन है उसके पीछे हैं। अब मुसलमानों के खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह दूसरा इल्जाम यह था कि मुसलमान हिंदुस्तानी कौमियत के मुखालिफ है। इसके जवाब में भी अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि अगर कौमी सूरत की मुराद यह है कि मुख्तलिफ मजहबी जमातों को हयाताती मानों में मिला जुलाकर एक कर दिया जाए तो फिर मैं ही इस नजरिए कौम से इनकार का मुजरिम हूं। मैं पंडित नेहरू से एक सीधा सा सवाल करना चाहता हूं, जब तक अक्सरियत वाली कौम 10 करोड़ की अकलियत के कम से कम तहफात को जिन्हें वो अपनी बका के लिए जरूरी समझती है ना मान ले और ना ही साहस का फैसला तस्लीम करे बल्कि वहां कौमियत की ऐसी रट लगाती रहे जिसमें सिर्फ उसका अपना ही फायदा है, हिंदुस्तान का मसला कैसे हल हो सकता है। इससे सिर्फ दो सूरतें निकलती हैं, या तो अक्सरियत वाली हिंदुस्तानी कौम को यह मानना पड़ेगा कि वो मशरक में हमेशा हमेशा के लिए बरतानी साम्राज्य की एजेंट बनी रहेगी, या फिर मुल्क को मजहबी और तारीखी और तमदनी हालात के जो है पेश नजर इस तरह तकसीम करना होगा कि मौजूदा शक्ल में इंतखाबात और फिरका वाराना मसले का सवाल ही न रहे। पंडित नेहरू के जवाब में दिए गए अल्लामा इकबाल का यह बयान यकीनी तौर पर पंडित जी की नजर से गुजरा होगा। इस बयान में रोजे उगलता आखिर इकबाल का तरक्की पसंद वसी और नजर और सांस मुसलत बस आप देखिए नुमाया है। मतलब यह बयान सबरे पाकिस्तान की नफी से नहीं बल्कि असबात से इबारत है। ऐसे में पंडित जी का यह कहना है कि 1930 के बाद इकबाल अपने सबरे पाकिस्तान से दस्तदार हो गए दयानदार पर कथित तौर पर मबनी नजर आता और यह भाव मेरी बहन आपको भी दूर करना होगा, हमें आपके सुनने वाले से उन्होंने भी दूर करना होगा कि ये तमाम जो भाव जो है ये प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर किया जा रहा है बल्कि तारीखी हकीकत पर तासब की चादर डालने के मुतरादिफ है। अब देखिए जब पंडित नेहरू ने मॉडर्न रेवन्यू जो कलकत्ता से छाया होता है दुनिया इस्लाम की सूरत पर तीन मजामीन में वतनीत नशरिज्म और लादिनियत के फरोग का खैर मुकदम किया था तो उसके जवाब में इकबाल ने भी मॉडर्न रिव्यू उसी में पंडित जी की फिक्री गुमराही को रास फिक्री में बदलने का सामान भी किया। अपने तवील मजमून के आगाज में इकबाल ने ब्रमला कहा, अब मैं फिर उनके इकबाल की अपनी पूरी इबारत पढ़ने लगा हूं खत की, कि मैं इस बात को पंडित जी और कारीन से पोशीदा नहीं रखना चाहता कि पंडित जी के मजामीन ने मेरे जहन में एहसास का एक दर्दनाक हिचान पैदा कर दिया। जिस अंदाज में उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया है इससे एक ऐसी जहनीत का पता चलता है कि जिसको पंडित जी से मंसूब करना मेरे लिए दुश्वार है। वो अपने दिल में मुसलमानों ने हिंद के मजहबी और सियासी इस्तेकाम पसंद नहीं करते। हिंदुस्तानी कौम परस्त जिनकी सियासी तसवरियत ने सियासी हकीकत को कुचल डाला है इस बात को गौरा नहीं करते कि शुमाल मगरबी हिंद के मुसलमानों में एहसास खुद मुख्तारी पैदा हो। इकबाल के खत का मैंने किताब पढ़ा आपके सामने। अब इकबाल का यह तजिया कि पंडित जी की सियासी तस्वीर ने एहसास हकीकत को कुचल डाला है वक्त ने बहुत जल्द सच कर दिखाया। पंडित जी के दिल में बड़े सगीर की जिंदगी के ठोस हकायक का एहसास जाग तो उठा लेकिन मौलाना अबुल कलाम खिदमत इतना हाजिर हुए उन्हें भी ठोस हकायक यानी कि पाकिस्तान की हकीकत को कबूल करने का मशवरा देने लगे। मौलाना आजादी ने तस्लीम इंडिया विंस फ्रीडम में इस बात का यूज कर फरमाया कि आफ्टर फ्यू डेज जवाहरलाल केम टू सी मी अगेन ही बिगैन विद अ लॉन्ग प्रिम्बल इन विच इज एम्फसाइज दैट ही शुड नॉट डल्ज इनटू विशफुल थिंकिंग बट फेस रियलिटी अल्टीमेटली ही केम टू द पॉइंट एंड आस्क मी टू गिव अप अपोजिशन टू द पार्टीशन। अब देखिए ये उनकी मैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से ही आपको सुना रहा हूं मैं आपको। अब इस्लाम यानी हिंद ने 1946 के इंतखाबात में अपने वोट के जरिए पंडित नेहरू और गांधी जी के सियासी ख्वाबों की जिंदगी का जिन हकायक का एहसास दिलाया था इकबाल ने बरसों पहले पंडित जी को इन हकायक की जान में तवज्जो करते हुए कहा था कि सियासी तदब्बुर का तकाजा ये है कि जिंदगी के हकायक से फरार होने की बजाय इनकी आंखों में आंखें डालते से पंजा आजमा हुआ जाए। अपने जेर मजमून में अल्लामा इकबाल ने जुदागाना मुसलमान कौमियत के सवाल पर भी दो टोक अंदाज में सारा ख्याल किया था कि इस्लामी ने हिंद के सियासी मसलक पर उन्होंने बड़ी खूबसूरत रोशनी भी डाली। मैं वो भी आपके वही लफ्ज लफ्ज पढ़ देता हूं क्योंकि ये अमानत है कि अगर कौमियत के मानी हिब्बुल वतनी और नामूस वतन के लिए जान तक कुर्बान कर देने के हैं तो ऐसी कौमियत मुसलमानों के ईमान का जुज है। इस कौमियत का इस्लाम से उस वक्त तसादुम होता है जब वो सियासी सबर बन जाती है और इत्तेहाद इंसानी का बुनियादी असूल होने का दावा करती है और ये मुतालबा करती है کہ اسلام شخصی عقیدے کے پسند چلا جائے اور قومی زندگی یہ حیات بخش عنصر کی حیثیت باقی نہ رہے. جداگانہ مسلم قومی کا سوال صرف ان ممالک میں پیدا ہوتا ہے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں, جہاں قومی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی ہستی کو مٹا دیں. جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہیں اسلام قومیت سے ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے, کیونکہ یہاں اسلام اور قومیت عملاً ایک ہی چیز ہے. میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نے ہند کی ایسی صحیح طرح کا کوئی شکار نہیں بنے گی جو ان کی تہذیبی وادت کا خاتمہ کر دے. اگر ان کی تہذیبی وادت محفوظ ہو جائے تو ہم اعتماد کر سکتے ہیں وہ مذہب و بلوطنی میں ہم آہنگی پیدا کر لیں گے. اب علامہ اقبال کا جو یقین کامل بالکل درست نکلا آپ دیکھ لیں. اسلامیہ نے ہند نے بالآخر متحدہ ہندوستانی قومی کا سیاسی تصور وہ غلط ثابت کرتے ہوئے جمہوری مرکزی پاکستان قائم کیا.
صحیح سر, یہیں پہ ہم ایک بریک بھی لینا چاہیں گے. یعنی میک لانگ سٹوری شارٹ, جو آپ نے پورا کا پورا پہ بتایا کہ ظاہر ہے بہت سے لوگ اب یہ بھی ابہام پیدا کرتے ہیں کہ انگریزی میں بات کریں, بیرون ملک تعلیم حاصل کی تھی, چاہے وہ علامہ اقبال تھے چاہے قائد اعظم محمد علی جناح تھے, اینڈ اٹ واز این انٹرنیشنل لینگویج, اور اس وقت بر صغیر پاک و ہند پہ حکمرانی بھی انگریزوں کی تھی. تو دس واز اے میڈیا آف کانورسیشن. مگر جتنا آپ نے بیان کیا کہ یعنی علامہ اقبال نے ہر طریقے سے اسلام کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا اور کیوں وہ پاکستان چاہتے تھے, آپ نے یہ تمام چیزیں بیان کی. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے میرے پہ, آپ پہ اور بے شمار لوگوں پہ جو سادگی سے اس ابہام کو کہ قائد اعظم یا علامہ اقبال کی پرسنالٹی میں مغربیت کا عنصر دیکھتے ہیں یا سوشلزم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, وہ ایک دفعہ سوچیں ضرور ضرور سوچیے.
تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی تذکرہ کر دوں کہ میں نے بہت محتاط ہو کے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا, بلکہ میں نے تاریخی حوالوں سے, تاریخی کتب سے, جو کوئی مصدقہ کتابیں ہیں یعنی تاریخ کے لحاظ میں, اسی سے میں نے آپ کو چیزیں پڑھ کے سنائی ہیں.
جس سے آپ نے علامہ اقبال محمد علی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی فکر کا اظہار کیا آپ نے. بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یونگس ٹاؤن ٹورانٹو.
The COVID-19 vaccines in you.
How do I know COVID-19 vaccines are safe?
It's normal to have questions when something is new. We want you to know that Health Canada only authorizes vaccines that are safe, effective, and of the highest quality. Canada is recognized around the world for its high standards and rigorous vaccine review process. Find out more about COVID-19 vaccines at canada.ca/COVID-vaccine. A message from the Government of Canada.
Are you self-employed and having trouble getting a mortgage? Bank declined your mortgage? Are you in high interest credit card debt? Is your bad credit stopping you to get mortgage? Do you need emergency mortgage? Only one answer for all these questions. Call Harry Song, principal broker of Majestic Mortgage.
For Majestic service, call Majestic Mortgage. Your best interest is guaranteed. 647-228-1000.
قرضے سے نجات کے لیے ایک ہی نام, محمد صدیق. کال دا سولوشن, پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا.
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن بینکرپسی انسالوینسی کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80%. محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں, پرسکون زندگی, اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن. اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے, قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 416-671-0577.
HearMax لے کر آئے ہیں Ultimate Hearing Solution with world's smallest advanced and digital hearing aids. وہ بھی سب سے کم قیمت میں. کسی بھی ہیئرنگ ایڈ کی خریداری پر بنا کسی فکر کے 3 سال کی وارنٹی بھی حاصل کیجیے. فری نو اوبلیگیشن ہیئرنگ ٹیسٹ کے لیے آج ہی کال کیجیے HearMax. سرو کرتے ہیں GTA میں 2 لوکیشن سے,
جین ایگلنٹن یا پھر دنداس ایرنڈیل کے انٹرسیکشن پر. 416-792-8792 HearMax 416-792-8792.
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس ایل ای ڈی اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے. تو انتظار کیسا, ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن 280 ردرفورڈ روڈ یا اسپرنگ ڈیل اسکوائر شاپنگ سینٹر یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ یا 9909 مارکم روڈ. مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666 ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس
تھاڑے جاننے پہچانے راجہ یا پھر جس ٹرک دی بہترین کوالٹی سروس دے نال پھر وارنٹی اکال ٹرک اینڈ لیوب
ڈرائیو تھرو
اکال ٹرک اینڈ لیوب
ٹرک واش
اکال ٹرک اینڈ لیوب
ریپیئر
اکال ٹرک اینڈ لیوب
ٹائر سروس
اکال ٹرک اینڈ لیوب
کال جس او راجہ 905-565-1100
1776 میئر سائڈ ڈرائیو ان مسساگا اکال ٹرک اینڈ لیوب
Mesmerized Optical, sunglasses, eyeglasses and contact lenses.
Doctor on site, get your eyesight checked. Mesmerized Optical.
Markham and Shepherd, 1789 Markham Road, 416-335-0786.
سروس ٹو ہیومینٹی از سروس ٹو اللہ. مسلم ویلفیئر سینٹر وہ ادارہ ہے جو بنا کسی کلر ریس ریلیجن کے ہر ایک کی خدمت میں سرگرم ہے. اس ماہ رمضان میں جو کہ نیکیاں بانٹنے اور سمیٹنے کا مہینہ ہے, آئیے ہم اور آپ مسلم ویلفیئر سینٹر کے پروجیکٹ رمضان کے ذریعے ضرورت مند افراد کی مدد کریں. $60 کی یہ گفٹ باسکٹ جس کی ریٹیل ویلیو $100 ہے, ڈونیٹ کر کے ایک خاندان کے چار افراد کو مہینے بھر کے لیے راشن مہیا کر سکتے ہیں. آئیے اور اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیے. مسلم ویلفیئر سینٹر 416-754-8116 ٹورانٹو سے باہر رہنے والے ٹول فری 1-866-754-3111
MWCanada.org
پروگرام میں جناب سمیع اللہ ملک صاحب, دا میں نے پھر دا کہہ دیا, آپ نے پھر میری شکایت لگا دینی ہے bittertruth.uk. لیکن صاحب عمر کا تقاضا ہے, میری تو عمر کا تقاضا ہے, چیزیں بھول جایا کرتی ہوتی ہیں. مگر سمیع اللہ ملک صاحب کی جو ویب سائٹ ہے bittertruth.uk ذہن کو تازہ کرنے کے لیے بہت خوبصورت مواد آپ کو ملے گا, ضرور وزٹ کیجیے گا. جی سمیع اللہ ملک صاحب, ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید.
بہت شکریہ جی.
جی سر,
اب میں آپ کے جو بہن انٹرو میں جو آپ نے دوسری جو چیزیں ابہام کی باتیں کی تھیں اس میں ذکر تھا کہ انگریزی لباس پہننا اور
قائد اعظم محمد علی جناح, میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں سوچتی ہوں. آپ دیکھیے انتھک محنت کی انہوں نے, جس لڑکی سے شادی کی اس لڑکی نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا, آپ نے بڑی بھاری قیمت چکائی اپنی ذاتی زندگی میں بھی, حالانکہ اس کا بڑا خیال کیا, مگر پھر ان کے لباس کے بارے میں بات ہو رہی ہے میرے پاس جب آپ یہ ذکر کر رہے ہیں نا, یعنی وہ ابہام پیدا کرنے والے بہت ساری اور باتیں ہیں, مگر ایک واقعہ جو میں شیئر کرتی ہوں. کہتے ہیں کہ جولائی 1976 میں حکومت پاکستان ترکی RCD آپ کو یاد ہوگا, تو جی اس کی سالگرہ کے موقع پہ نا خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے تھے جس میں ایران, ترکی اور پاکستان سے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر تھی. ایک پہ سابق شاہ ایران کی تصویر تھی جو اس وقت شاہ ایران مطلب اس وقت کے شاہ ایران تھے, ایک پر عطا ترک مصطفیٰ عطا ترک کی تصویر تھی اور ایک پہ قائد اعظم کی. اب جناب یہاں پہ مسئلہ کھڑا کر دیا انہوں نے قائد اعظم کے لباس کے اوپر. یعنی ہم افعال کی بات ہی نہیں کرتے, ہم کردار کی بات ہی نہیں کرتے, ہم ظاہری شخصیت کی بات کرتے ہیں. اور میرا غم صرف اتنا ہے کہ ہمارے ہیروز جو میرے تو آج تک ہیرو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, ہم اپنی ینگ جنریشن کے لیے اپنے رول ماڈلز کو بھی داغدار کرتے چلے جا رہے ہیں.
بہن اب دل تھام کے سنیے, آپ بھی اور آپ کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ابہام میں شامل کیا ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری طرح آپ بھی اقبال اور قائد اعظم کے اس شاپ میں ہیں, الحمدللہ. یہ بڑا شرح صدر کی بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اکثر میرے جو ٹی وی پروگرام ہوتے تھے کچھ, میرے رمضان میں درس قرآن کے پروگرام تھے, اور میں مجھے ایک مفتی صاحب نے سوال جڑ دیا پاکستان سے, ان کہا جی ہم ہندوستان سے بھی کچھ لوگوں نے بکھا, ان کہا جی آپ ٹائی باندھ کے قرآن کا درس دیتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, آپ کو پتا نہیں یہ ٹائی جو ہے سلیپ کی نشانی ہے اور
جانتے
ہیں. اچھا میں اس سے شروع کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آسانی ہو. फिर मैंने कुछ तो मैंने की, मैंने कहा कि ये हमारा टाइम खोटा कर रहे हैं, कोई जवाब ना दिया जाए, लेकिन फिर बिलाखिर जब बहुत तंग किया तो फिर मैंने टीवी के ऊपर ये जवाब दिया और वो मजमून और प्रोग्राम मेरी वेबसाइट पर मौजूद भी है। मैंने फिर ट्राई की जो पिछली 7,000 साल की तारीख थी वो उनके सामने रखी।
या
मैंने कहा कि ये देखिए ये तो स्लीप की निशानी है ही नहीं सिरे से, अगर स्लीप की निशानी होती तो पोप बांधता, कोई फादर बांधता, कोई पादरी बांधता। आप मुझे बताइए कोई एक भी पादरी या एक भी फादर जो है कैथोलिक का ऑर्थोडॉक्स का मतलब है वो प्रोटेस्टेंट जो है वो इसको टाई पहनता, कोई भी टाई नहीं पहनता। वो तो एक पट्टी बांधते हैं जिन चीजें जो स्लीप की निशानी बताते हैं, मतलब है टाई तो कोई नहीं पहनता। फिर मैंने कहा कि ये तो रोमन अंपायर के जमाने की फैशन लिबास का एक हिस्सा है, पहले वो धागा बांधा करते थे, फिर रस्सी बांधते थे, रस्सी बांधने के बाद फिर उन्होंने कपड़ा बांधना शुरू कर दिया टाई की तरह, और फिर स्लीप भी नहीं थी, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। आपने किस तरह कहना शुरू कर दिया वो मजमून जो था, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये शुक्र है कि जो पाकिस्तान के बड़े स्वाद आजम थे जो बड़े, उन्होंने फिर इस बात की बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा कि आप अपना आपने आपने क्यों इतनी बड़ा इतना वक्त लगाया इस पर लगाने के लिए, आपका वक्त जाया करने पर तुले हुए हैं आप इस बात
पर। यहाँ पे इवन जो ग्रेजुएशन गाउन है, अगर आप इसकी हिस्ट्री की तरफ चले जाएं तो देखिए ग्रेजुएशन गाउन की हिस्ट्री क्या है। आज अगर जो लोग ये समझते हैं कि ये भी मगरिब की इख्तरा है, नॉट एट ऑल।
फिर मैंने उससे पूछा, हमारे जो आलिम थे उनको तस्वीर दी, उन्होंने शेरवानी और नेहरू टाइप की टोपी पहनी हुई थी और मोरीदार चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था। मुझे कहा, मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि क्या रसूलुल्लाह ने सारी जिंदगी शेरवानी पहनी, क्या ये नेहरू टाइप की टोपी पहनी रसूलुल्लाह ने मतलब इस तरह की, या चूड़ीदार पजामा पहना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी साहबी ने पहना हो। यहां मैंने कहा कि आप, मैंने कहा आपके चूड़ीदार पजामा जो आपने पहना हुआ है, शेरवानी जो पहनी हुई है, इसकी तो उम्र ही सारी 200 साल है, 250 साल इस लिबास की, तो इसका तो कोई ताल्लुक नहीं इस्लाम के साथ। फिर दूसरी बात ये थी, कायदे आज़म के किरदार की बात ये थी कि आप ये देखें कि मुझे इकबाल का वो शेर याद आ गया कि वफादारी बशर्त उस्तवारी असल ईमा है।
क्या बात है, वफादारी बशर्त उस्तवारी
ही असल ईमा है, बड़े बुतखाने में काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। यानी उसका सबसे बड़ा जो दीन है ईमान है उसको वफादारी है। अगर ब्राह्मण भी अपने दीन पे वफादारी का मतलब अपने दीन से वफा करता मर जाता है तो उसका हक है कि उसे मुकद्दस यानी काबे के जो है काबा यानी मुकद्दस जगह तस्वीर दी गई कि उसे मुकद्दस जगह पे यानी गाड़ा जाए। यानी मकसद तो अपने मिशन से डिटर्मिनेशन है, उससे वफादारी है। फिर आप ये बताइए कि शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि जिनके करोड़ों मद्दा हैं, मुफस्सिर कुरान है, आप उनकी इस बात को उनकी किताब के अंदर कैसे खुर्च के निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सोया हुआ था तो मुझे ख्वाब आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि शब्बीर खड़े हो जाओ मेरे इस बंदे जिसका नाम मोहम्मद जना है, इसकी मदद करो, ये जो मिशन लेके उठा है ये मेरा मिशन है। उन्होंने कहा कि मैंने चुप कर गया, मैं उस जमाने में कायम के लिबास के इनके मगरबी तौर अतवार से मैं इनका मुखालिफ था, दिल में मुखालिफ थी, तो मैं चुप कर गया। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। कहते अगले दिन जब मैं आया तो मुझे झंझोड़ दिया गया, झंझोड़ कर कहा गया कि तुमने सुना नहीं, तुमने हमें कल क्या कहा था। तो कहने कहा कि जब ख्वाब दोबारा आया तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, रसूलुल्लाह से आगे ताई फरमाई इसकी बात पर। उन्होंने कहा कि मैं फिर जिनाह साहब के पास गया। उन्होंने कहा कि मैं जिनाह साहब से जब मिला, जितनी दफा मिला, मैंने जिनाह साहब से ज्यादा पुरअज़म डिटरमेंट और अच्छा मुसलमान नहीं देखा।
सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
अब मुझे बताइए कि वो लोग जो कि इफ्तिखार दीन जैसे लोग जो टाई और सूट और जो या दूसरी शेरवानी,
मगर सर अगर इसका देखा जाए ये भी तो इबहाम आ गया ना। हालांकि कुरान पाक में लिबास का सतर को ढांपना, यानी लिबास जो मेरी बहसियत औरत मुझे कहां तक कवर करे मर्द के लिए, मगर उसमें ये तो नहीं कि मैं जुब्बा ही पहन लूंगी तो मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ।
बिल्कुल नहीं, लिबास के लवाजमात बताए गए हैं, लिबास के लवाजमात बताए गए हैं, मतलब ये सारी बात है। फिर मैं आपसे एक और मैं अर्ज करूं, मतलब कायदे आज़म का डिटर्मिनेशन देखें आप, मतलब कितना डिटर्मेंट थे अपने से यानी पाकिस्तान के साथ कि वो बीमार हो गए, उन्होंने अपने मालिक से कहा कि मेरी बीमारी का बिल्कुल नहीं आपने बताना, नहीं तो ये पाकिस्तान का मामला जो है खटाई में पड़ जाएगा। इससे ज्यादा डिटर्मेंट आपको, इससे ज्यादा लॉयल आदमी पाकिस्तान के साथ कौन हो सकता है जिसने अपनी जिंदगी दौ पे लगा दी। मतलब फिर मैं अब आता हूँ, फौरी तौर पर वक्त नहीं है, मैं 14-15 अगस्त के जो वहां में उसकी तरफ आता हूँ। ये पाकिस्तान 14 अगस्त को इसलिए बना, इसकी मैं तारीख आपको बता देता हूँ, और ये जो तारीख मैं आपसे रखने लगा हूँ, ये तारीख जो है ये भी अंग्रेजों की किताब से है, ये आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में महफूज है, मौजूद है ये सारी चीज। मतलब है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो 15 तारीख को ही पाकिस्तान को आजादी देना चाहता था हिंदुस्तान को, एक ही वक्त में लेकिन जो हिंदुस्तान के हिंदू प्रोत थे वो उन्होंने सर उठा लिया और शोर मचा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, 15 तो बड़ा मुकदस दिन है हमारे साथ, हमारे साथ पाकिस्तान को न मनाया जाए, इनको या एक दिन पहले दें या एक दिन बाद में दें। और वो लॉर्ड माउंटबेटन इसलिए 15 अगस्त रखना चाहता था क्योंकि वो जापान की जंग का हीरो था, वो भी 15 अगस्त को ही थी, तो उसके साथ से अटैच करना चाहता था अपनी इस बात को भी, इस वाक्य को भी। लेकिन जब हिंदुओं का बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, नेहरू को भी उन्होंने बेबस कर दिया, पटेल को भी बेबस कर दिया, हिंदुओं ने मतलब जो प्रो थे वो मैदान में उतर आए, तो फिर बकायदा तौर पर जो लॉर्ड माउंटबेटन था उसे ये काम अर्जेंसी में करना पड़ा। उन्होंने 14 अगस्त का ऐलान किया बकायदा तौर पर 14 अगस्त आजादी मिलेगी। 13 अगस्त को बुला के कहा गया कि कल आपको यौम आजादी को बुलाया जाएगा। तो हमारे लोगों ने हैरानी से पूछा कि आप तो 15 को करने वाले थे, आपने 14 का फैसला कैसे कर लिया। अब वो बताना नहीं चाहते थे कि मेरे हिंदुओं का इतना प्रेशर है, लेकिन देखिए अल्लाह का अपना एक निजाम है। अगर 14 अगस्त को जो है हमारी मुसलमानों का सबसे मुबारक महीना रमजान चल रहा था और रमजान का सबसे मुबारक अशरा आखिरी अशरा था और आखिरी अशरे में सबसे मुबारक रात जो 27वीं रात थी और 14 तारीख को रात थी, क्योंकि वो चाहे करते ना करते लेकिन अल्लाह की तरफ से ये फैसला हो चुका था कि पाकिस्तान को जो है लैलतुल कद्र की रात को बनना है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम या हत्ता मतलाइल फज्र। ये 14 अगस्त की तारीख जो है मेरे रब ने मुकर्रर की है, मेरे रब ने ऐसी मुबारक रात को की है जिसकी रात कुरान उसने नाजिल किया, पूरा का पूरा कुरान जो है नाजिल किया अल्लाह ताला ने, यानी ऐसी मुबारक रात को पाकिस्तान को बनाया गया। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये मोजज़ाती रियासत है, ये खुदादाद रियासत है, ये खुदादाद रियासत इसलिए बनाई गई थी कि इसलिए कि मुसलमानों ने अपने ये नारा लगाया था, अल्लाह के साथ दुआ की थी, अल्लाह से मुनाजात की थी कि अल्लाह हमें ऐसी धरती दे जहां पे हम कुरान को नाफिज कर सकें। हमने स्लोगन भी लगाया था जीते बैठते उठते कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या आप नहीं जानते ये भी तारीख का हिस्सा है कि 44 के बाद लोगों ने पूछा कायदे आजम से कि जी पाकिस्तान जो बनाना जा रहे हैं उसका आइन क्या होगा। एक दफा नहीं, दर्जनों मरतबा कायदे आजम से सवाल पूछा गया, तो सवाल कायदे हो गए। कायदे ने कहा कि मैं बार बार बता चुका हूं कि हमें आइन की जरूरत नहीं है, हमारा आइन तो 1300 साल पहले आ चुका है कुरान की सूरत में। इससे ज्यादा और डिटेल से क्या बात करते हैं, क्या बात कही जाए। मतलब फिर जो स्टेट बैंक भी उनको इफ्तार की जो तकरीर है उसमें भी देख लीजिए, उसमें भी यही बात दोहराई गई है। फिर 14 अगस्त जो है, मैं आपको अर्ज करूं, 14 अगस्त जो है ये बकायदा तौर पर ऑथेंटिक डेट है। ये इटली जो उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के, उन्होंने भी अपने बयान में 14 अगस्त का लिखा हुआ, अपने उनकी जो किताब है उसमें जो उनकी जो स्टेटमेंट पड़ी हुई है यहाँ पे कॉमन रूम में पड़ी हुई है, और कॉमन रूम के ऊपर जो कॉलम, जो उनका जो कॉलम है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसका नंबर भी 1049 है। अगर कोई इसे चेक करना चाहे तो गूगल पर जाकर इसे चेक कर सकता है कि इसमें तो हमें कोई अभाव इसलिए नहीं है कि जिन लोगों से हमने आजादी ली वो 14 अगस्त कह रहे हैं। फिर हमने खुद ऐसे लोग हमारे उसमें तारीख में मौजूद है पाकिस्तान में जिन्होंने बकायदा इस कैम पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया, जो बकायदा तौर पर मैंने खुद कई दफा उनसे पूछा ये 14 अगस्त के बारे में, और उन्होंने बताया। फिर ये है कि मैं आपसे एक और अर्ज करूं कि हमारे यहाँ एक हमारे दोस्त थे और वो फरमाया करते थे, कहा कि मैं जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से हिजरत कर रहा था तो मैं रास्ते में पैदा हुआ और मेरी तारीख बताए 14 अगस्त है। अब आप इससे और ज्यादा हम आपको क्या बताएं इस अभाव के बारे में। अब दूसरी बात आ जाइए, आपने
मगर सर ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो इंग्लैंड में पड़ा हुआ है उसमें जो तहरीर दर्ज है, मेरा दिल चाहता है हम अगले प्रोग्राम में उसके बारे में भी जरूर बात करें। और जो पाकिस्तान का पहला, मैंने बताया ना ये इस इबाम यहीं से आया ना कि जब मैंने इस तहरीर को पढ़ा तो मैंने हर चीज को उसके लिहाज से गूगल किया, देखा, यानी पाकिस्तान का जो पहला डाक का टिकट अगर देखा जाए, फर्स्ट डाक टिकट, तो उसमें पाकिस्तान की आजादी के 11 माह के बाद 9 जुलाई 1948 को ये पहला डाक टिकट जारी हुआ था। और इस पहले डाक टिकट में जो पाकिस्तान की आजादी की तारीख है वो 15 अगस्त 1947।
मैं आप समझ करता हूँ इसमें उभाम क्या है, मैं आपको उसको दूर कर देता हूँ। बात यह है कि जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान के नोट जो उस जारी नोट थे अंग्रेज के दौर के वो चलते रहे, सिक्के भी चलते रहे, हत्ता के वो मकानों की जो रजिस्ट्री होती थी जो स्टाम्प पेपर थे उस स्टाम्प पेपर के ऊपर भी हिंदुस्तान के एक महाराजा की उसकी तस्वीर बनी हुई है। मेरे पास भी मेरे घर में वो स्टाम्प मौजूद है, वो यानी काफी कई साल चलते रहे, जब तक कि हमारे स्टेट बैंक को पूरी को आजादी नहीं मिल गई, पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं हो गया। फिर दूसरी बात यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में बना। उस तक अच्छा आपको याद होगा जब पाकिस्तान बना तो जनरल ग्रेसी कमांडर चीफ थे, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों तरफ जनरल ग्रेसी थे। यही वजह है कि कायदे आजम जब गवर्नर जनरल बने तो कायदे आजम ने बकायदा कश्मीर के मामले में जनरल ग्रेसी को हुक्म दिया कि जब हिंदुस्तान ने पठानकोट की धरती को अबूर करके कश्मीर में दाखिल हो गया तो कायदे ने कहा यह तुमने खिलाफवर्जी की है कि जिस कानून के तहत पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है उसमें ये चीज वाजे तौर पर तस्लीम की गई है कि जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत होगी वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, जो जहां पर हिंदुओं की अक्सरियत होगी वो हिंदुस्तान का हिस्सा होंगे। तो ये अब नेहरू ने ये जो है उस मादे की खिलाफवर्जी की है, और तुम क्योंकि कमांडर इन चीफ हो और मेरे अंडर हो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम फौरी तौर पर जो है इस हमले का जवाब दो और हिंदुस्तान की फौजों को रोको वहां पर जाकर। लेकिन आप देखिए कि लॉर्ड ग्रेसी जो था वो उसने कायदे का ये हुक्म नहीं माना। इससे आपको उसका पता चल जाएगा उस अंग्रेज की चालाकी का, अंग्रेज की बदयांती का, जो कि उन्हें इस बात की तकलीफ हो रही थी। वो ये समझते थे अंग्रेज, आप देखिए अब अंग्रेज की खुद किताबें आ गई हैं लाइब्रेरी के अंदर, ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जो आजादी का जो बुलबुला उठा था ये ज्यादा मुसलमानों ने उठाया। और एक जेफ्री हटसन है जो अंग्रेज है वो कहते हैं कि दरअसल हिंदुस्तान के हिंदू ये इस चीज को भूल गए हैं, उनको भी आजादी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की वजह से मिली है। उन्होंने तारीख से ये साबित भी किया, उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान थे वो हिंदुओं के जुल्म से इस कदर ओप्रेस्ड हो गए थे कि उन्होंने अपनी आजादी जब ली तो उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि हम सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हो चुकी थी और उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर मुसलमान ये काम ना करते तो हो सकता है कि अंग्रेज का अगले सौ साल भी हिंदुस्तान में हुकूमत पे गुजर जाते। ये अपनी किताब में वो लिख रहा है, अंग्रेज लिख रहा है मतलब है। और वो अंग्रेज लिख रहा है जो कि पाकिस्तान का हामी नहीं, पाकिस्तान का मुखालिफ है, उसने ये बात लिखी है। और उसने भी आपका भाव दूरीकरण कर दू, उसने भी ये 14 अगस्त का जिक्र किया, उसने 14 अगस्त का जिक्र किया उसने 14 अगस्त।
बहुत शुक्रिया सर। मैं बल्कि आपको ये कहती हूँ कि आप लोग गूगल करके देखिएगा कि 14 अगस्त जो है, अब तो जाहिर है आप पुरानी डेटा भी रिट्रीव कर सकते हैं।
गूगल की भी कुछ बातों में यकीन इसलिए नहीं करता
नहीं सर, वो आगे मैंने भी बल्कि आपसे प्रोग्राम करते हुए 27 रमजान 1366 हिजरी का आपको रिजल्ट मिलेगा। होता यह है कि मैं बल्कि हम 23 मार्च के हवाले से भी बात करते हैं, 23 मार्च के मार्च का महीना है, तो मैं ये जो इबहाम पैदा करने वाले हैं ना, बाजू का हम खाम खट वो जो टूल्स होते हैं ना उनका हिस्सा बन जाते हैं या किसी चीज का हिस्सा बन जाते हैं। एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। और जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मामले में, सिंध के मामले में हर शख्स अपनी राय दे देता है, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब जो MQM का हिस्सा रहे, कल ही इनका एक क्लिप रिलीज हुआ है, मैं वो छोटा सा आपके साथ शेयर करती हूँ। और उन्होंने कन्फेस किया है कि हम किस चीज का हिस्सा बन गए थे। एक ये छोटा सा क्लिप शेयर करते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि हम जनाब अल्लाह ताला समीउल्लाह मलिक साहब को जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती से हमेशा रखे, आमीन सुमा आमीन, कि ये वो खूबसूरत लोग जो हर चीज का जायजा लेके पढ़ने के बाद बाकायदा उस इंफॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर करते हैं। हम 23 मार्च के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, मगर ये क्लिप जरूर वॉच कीजिए।
ऐ मेरे बलूचिस्तान के नौजवानों, ये इंडिया हमारा दोस्त नहीं है, ये दुश्मन ममालिक और दुश्मन मुल्क की एजेंसियां हमारी दोस्त नहीं है, ये पाकिस्तान और तुम्हारी दुश्मन है और तुम्हारी सबसे ज्यादा दुश्मन है। मैं मुस्तफा कमाल और उसके साथ के लोगों को यह तजुर्बा है, हमें भी कराची में किसी ने 35 सालों तक रियासत के खिलाफ खड़ा रखा, नौजवानों के हाथों में हथियार दिए, रो का एजेंट बनाया और खुद बना वो रो का एजेंट। लेकिन आज आप देखो 35 साल गुजरने के बावजूद कराची जैसा शहर तबाह बर्बाद हुआ है, जिन लोगों ने उनकी बात मानी वो तबाह बर्बाद हुए हैं। कोई सुख नहीं मिला।
ये उन्होंने खुद कन्फेस किया है कि वो किस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, मगर फिर बाद में उन्होंने रियलाइज किया क्या हकीकत है क्या नहीं, अब आप खुद अखज कीजिएगा। मगर समीम मलिक साहब, आपको भी यकीनन हैरत जरूर हुई होगी इसको सुनने के बाद। 23 मार्च के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, हमारे हीरोज हैं ये। जो लोग इबहाम पैदा करना चाहते हैं, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में भी मुझे और आपको में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं, और बाजू का तो उस अफरा तफरी का शिकार भी हो जाते हैं। जी सर,
23 मार्च का कोई ताल्लुक नहीं है। जो करारदाद पाकिस्तान भी जो थी वो भी 24 मार्च को मंजूर हुई थी, लेकिन 23 मार्च को लोग वहां पर जमा होने शुरू हो गए थे, इसलिए 23 मार्च का। दरअसल 23 मार्च को हमारा पहला 23 मार्च 1956 को हमारा आईन मंजूर हुआ था, पहला पाकिस्तान का आईन मंजूर हुआ था, जिस आईन को मंजूरी से पहले, यानी हमारी दस्तूर साज असेंबली ने पास करने से पहले, सिकंदर मिर्जा ने, उस वक्त तक मलका के हुक्म चलते थे, जिस तरह कनाडा के ऊपर भी आजकल मलका जो है एक मलका समझ जाती है, एक ऑनररी क्वीन समझ जाती है, इस तरह क्वीन जो थी पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों पे उनका चल रहा था मामला। और 23 मार्च को जब दस्तूर पास हुआ पाकिस्तान का 1956, तो सिकंदर मिर्जा ने दस्तूर को यानी मुकम्मल तौर पर मंजूर करने से पहले इंग्लैंड वालों से ये मंजूरी ले ली थी, उसे यकीन दहानी करवाई थी कि मुतफिका तौर पर मुझे ही सदर तस्लीम किया जाएगा, बनाया जाएगा। और अंग्रेज ने बकाया तौर पर अंग्रेज बहादुर सिकंदर मिर्जा को यकीन दिला दिया कि ठीक है। और फिर जब वो दस्तूर मंजूर हो गया तो उसके बाद कानूनी तौर पर क्वीन की हुक्मरानी जो थी वो खत्म हो गई, लेकिन कनाडा में आज तक तो अभी तक क्वीन की हुक्मरानी चल रही है बहुत से मामलों के अंदर। ये 23 मार्च का एक
बेचारी क्वीन भी भाम का शिकार हो गई है ना, बहू ने आगे क्वीन का भी बड़ा खरक कर दिया।
ये 23 मार्च का ये मामला है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो दिन है वो 27 रमजान का है। हमें 27 रमजान की तरफ लौटना होगा, हमें यौम आजादी 27 मार्च को मनानी पड़ेगी, और सॉरी 27 रमजान को मनानी चाहिए, जो मुबारक शब है जिसका अल्लाह ने, जो महीने अल्लाह ने बनाए, हर सारे महीने अल्लाह के हैं, सब वक्त अल्लाह का है, अल्लाह तो खुद वक्त की कसम खाते हैं। वल असर, जिसका मैंने शुरू में जो तलावत की थी, वल असर इंसान लफी खुस्र, उसमें तो अल्लाह ने वक्त की कसम खाई है, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा गवाह है। जब से मैंने शुरू हुआ सारा मामला, वक्त ही तो है जो सब गवाही देगा। अल्लाह ने सबसे बड़ी मुसरत कसम खाई, अल्लाह को कसम खाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा इन्ना इंसान लफी खुस्र, कि बेशक तमाम इंसान खसारे में, लेकिन 4 सफात के लोग जो खसारे से बचेंगे। पहला खसारा इल्लज़ीन आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, गोया 25% कामयाब हो गए, 75% अभी खसारे में है। वामिल सालिहात, अच्छे अमाल किए, वो 50% कामयाब, 50% अभी खसारे में। वतवासौ बिल हक, और जो किया उसके ऊपर फिर जो हक की बात फैलाई, हक के डटे रहे हक के ऊपर, अब 75% कामयाब, 25% अभी भी नाकाम। और आखिर में क्या है, वतवासौ बिल सब्र, जो किया उसमें फिर सब्र कर लिया। अब ये इंसान 100, ये लोग हैं 4 सिफात के मालिक जो कि कामयाब हैं, वगरना बाकी सब लोग खसारे में, टोटल लॉस। अल्लाह ताला ने इस कुरान की आयत में कहा है। अब आप ये देखिए, जिस रात को कुरान नाजिल हुआ है, अगर हम कुरान को थाम लेते हैं तो फिर हमारी कामयाबी ही कामयाबी है। कुरान तो है ही कामयाबी की कलीद है। तो ये बहन, मैं बस मुख्तसर सी, क्योंकि वक्त नहीं, आपको बस इतनी बात मैं इत्तफाक करता हूँ। मैं
समीला मलिक साहब, मैं और आप आज हमने एक चेंज और लेके आए हैं कि हम दोनों मिल के एक ही स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। अल्लाह ताला कहते ना, कौमों को गिराने के लिए उनके मोराल को गिरा दिया जाता है, मोराल को गिराने के लिए अफरा तफरी का होना बहुत जरूरी है। यानी हर आदमी अपनी अपनी सिमत में भागता हुआ नजर आए, एक सिमत में हम भागते हुए नजर ही ना आए। बहरहाल सर, आपका बेइंतहा शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान का नारा लगाए, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह।
पाकिस्तान जिंदाबाद,
जिंदाबाद, पाइंदाबाद,
पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज,
अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM. हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288. इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशे आपके लिए, विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज ई आवाज, डाउनलोड करें फ्री ई आवाज ऑफिशियल ऐप रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी. फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com.
कोविड 19 वैक्सीन्स अते तुसी
मैनू किवें पता लगे कि कोविड 19 वैक्सीन्स सुरक्षित हन?
जद कोई चीज नवी होवे ता अजेहे प्रश्न करने आम हन. असी तुहानू जानकारी देना चाहुंदे हां कि हेल्थ कैनेडा सिर्फ उना वैक्सीन्स नू ही प्रवान की देंदी है जिहड़ियां की सुरक्षित प्रभावशाली अते उत्तम क्वालिटी दियां होण. दुनिया भर विच कैनेडा अपने उच्चे मियारां अते सख्त वैक्सीन रिव्यू प्रक्रिया लई जानिया जांदा है. कोविड 19 वैक्सीन्स बारे वधेरी जानकारी लई canada.ca/covidvaccine ते जाओ. कैनेडा सरकार वल्लों संदेश.
ओ मैं क्या जल्दी तैयार हो जा, फर्नीचर पसंद करदे करदे भी टाइम लगना.
हाँ सोडी फर्नीचर ही ता जाना है, अपने घर दे कोल एयरपोर्ट रोड वाली लोकेशन ते.
ओ नहीं, हुन आपा उना दी कैनेडी लोकेशन ते जाना. हुन उना दा पूरा स्टाफ पूरी क्वालिटी नाल इको छत नीचे अपनियां सर्विसेज देवेगा.
सोडी फर्नीचर कम्युनिटी दा सब तो पुराना फर्नीचर स्टोर हुन अपना फर्नीचर कैनेडी लोकेशन तो ही सेल करेगा. अपनी पसंद दा फर्नीचर वधिया डील्स ते लैण लई अज ही आओ इना दी कैनेडी लोकेशन 142 कैनेडी Road South, Brampton. Call 905-874-7171.
Super fan with a super deal. The iHeart Winter Sales event is on now. Don't pay for 90 days on all new cars, OAC, and no charge all-wheel drive on select models. Frontline workers receive 2% above invoice pricing on all new cars in stock. Your safety is our number one priority. We have masks and gloves ready for you. Looking for a Hyundai? I'm your guy. Visit navbhatiashyundai.com. Now 3 locations to serve you. This is Superfan Nav Bhatia. You are listening to 770 AM. For Hyundai, call Shah Ahmed. 416-817-2720.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने. उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नू मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहेंगे.
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है. अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नू कॉल करो 416-655-2000.
ट्रैकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो. ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी. तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी. आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी. एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी. क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप. 519-622-0660 या quicktrucklube.com. QTL, because we care.
J&G Mortgages deals with mortgages for self-employed, financing for second mortgages, 100% financing on builder purchases, new immigrants and low rates. If you're looking for a career in mortgage industry, J&G Mortgages is hiring for new and experienced mortgage agents. For more information, call Jarmanjeet Singh or Gurpreet Obey at 416-898-3800-416-898-3800. Brokerage license number 13034.
कुछ दोस्तां ते गुआंढियां नूं मिलना, काम तो बाद सहकर्मियां नाल समां बिताउणा, किसे दोस्त दे व्याह विच जाणा, ए सब नुकसानदायक तां नहीं हन, पर एही ओ चीजां हन जो ओंटारियो विच कोविड 19 मामलियां दे महत्वपूर्ण वाधे विच योगदान पा रहियां हन. समूहिक तौर ते फैलाव कारण बहुत लोग बीमार हो रहे हन, जिस नाल साडे हस्पतालां दा मरीजां नाल भरन दा खतरा है अते ए सब नूं जोखम विच पा रहा है. टीके साडी रक्षा विच सहायता करनगे, पर जदों तक ए सारयां लई उपलब्ध नहीं हो जांदे, सानूं सब नूं जनतक सिहत सलाह अते दिशा निर्देशां दी पालना करनी पवेगी. भाव सिर्फ जरूरी कारणां लई ही घर तों बाहर निकलना होएगा, जिवें कि करियाना खरीदण लई. घर रहो, सुरक्षित रहो, जिंदगियां बचाओ. ओंटारियो सरकार द्वारा भुगतान कीता गया.
Hotstar Premier Night. Watch the year's biggest blockbusters streaming straight to your screen exclusively on Hotstar. Sign up at a special price of $44.99.
When you use the promo code EAWAS, visit hotstar.com/CA.
पैसे बचाने के चक्कर च ना वीजे दी एवें खज्जल खुआरी ना कराओ, सीधे VSR लॉ ऑफिस जाओ.
VSR लॉ ऑफिस आओ, वीजे दी सारीयां प्रॉब्लम दा जल्दी हल पाओ.
तुहाडे अपने शहर विच स्टूडेंट वीजा,
विजिटर वीजा,
वर्क वीजा,
सुपर वीजा,
रेजिडेंस वीजा,
विजिटर वीजा एक्सटेंशन,
स्पाउस वीजा,
वर्क वीजा, परमिट और साइट,
बिजनेस एंड इन्वेस्टर वीजा,
स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप इनसाइड आउटसाइड कनाडा, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट स्पॉन्सरशिप. VSR लॉ ऑफिस नु कॉल करो 416-602-0002 ਤੇ 416-602-0002
आप सुन रहे हैं रेडियो साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7 हमारी रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या फिर आज ही eawaz